परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठकर परमेश्वर की वाणी को सुन सके और थोड़ा समय जो प्रभु के सामने बिताते हैं प्रार्थना पूर्वक और ध्यान पूर्वक और उत्साह पूर्वक हम बिताएं, ताकि परमेश्वर का वचन सुनकर आशीष पाकर यहां से हम वापस जाने वाले हो सके। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, वो बार बार एक सेंटेंस, एक वाक्य लोगों से कहते थे, जिसके सुनने के कान हैं वह सुने। क्या मतलब है? यीशु मसीह के जमाने में कुछ ऐसे लोग थे जिनका कान नहीं था? नहीं, सबका कान था, बहुत सुंदर कान था। यहूदियों का, यहूदी लोग को आप देखेंगे तो यहूदी लोग बहुत सुंदर लोग होते हैं, बहुत सुंदर कान भी, सुंदर लोगों का कान भी सुंदर होता है, बहुत अच्छा बड़ा बड़ा कान था। फिर भी प्रभु कहता था जिसके सुनने के कान हो वह सुने। एक बार एक संडे स्कूल टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक मुंह और दो कान क्यों दिया? बराबर है ना, एक मुंह और दो कान दिया। तो एक बहुत बड़ा बदमाश बच्चा था, वो बार बार अपना हाथ ऐसे ऊंचा कर रहा था। कुछ होते है बदमाश बच्चे, तो टीचर को मालूम है ये उल्टा जवाब देगा। सामने एक बच्ची बैठी थी, उसको पूछा, उसको इग्नोर कर दिया टीचर ने, उसको इग्नोर मारा। बच्ची से पूछा तो बच्ची भोली भाली बच्ची थी, उस बच्ची ने बोला, मैडम परमेश्वर ने हमको एक मुंह और दो कान इसलिए दिया है ताकि हम कम बोले और ज्यादा सुन। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर वापस वही लड़का हाथ ऊंचा कर रहा, तो वापस उसको इग्नोर किया। दूसरा एक लड़का से पूछा, तुम बोलो प्रभु ने हमको दो कान क्यों दिया है? तो वो इसका छोटा भाई है, बदमाशी में, खून का रिश्ता नहीं है लेकिन बदमाशी में ये छोटा भाई, वो बड़ा भाई ऐसा था। तो ये बोलता है, मैडम दो कान इसलिए दिए, एक कान से सुनने के लिए और दूसरे कान से निकालने के लिए। चुप, ऐसा नहीं है, बोल के टीचर ने उसको डांट की बिठा। फिर ये तब से शुरू से ही ऐसा हाथ ऊपर ऊपर कर। तो मैडम ने सोचा, चलो एक अवसर दे दो, बोलेगा तो उल्टा बोलेगा, बोलने दो, क्या कर, तुम बोलो, क्यों बोल रहे, क्या परमेश्वर ने हमको एक मुंह और दो कान? तो बोला, मैडम परमेश्वर ने हमको दो कान इसलिए दिया है कि जब हम बुढ़ा हो जाएंगे तो चश्मा रखने का स्टैंड, अगर कान नहीं है तो चश्मा किधर रखेंगे मैडम, तो चश्मा बार बार नीचे गिरे। तो वो कितना महान है, दो स्टैंड, नेचुरल स्टैंड बनाकर या चश्मा उसमें उधर टिक कर हम देख सकते दुनिया है? तो कहने का मतलब, कान का इस्तेमाल अलग अलग रीति से लोग करते हैं। यीशु मसीह ने जब कहा जिसके सुनने के कान हो वह सुने, इसका मतलब जो प्रभु कहता है उसको सुनने के लिए एक लालसा रखने वाला कान होना चाहिए। प्रभु जी आप बोलिए, आपका वचन मैं सुनना चाहता हूं, आपका वचन मैं ग्रहण करना चाहता हूं। प्रभु जी आप कहिए, मैं बेताब हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरे को आपका वाणी सुनना है। आज मैंने आपका वचन सुना नहीं, इस सप्ताह मैंने आपका वचन सुना नहीं, आज दिन भर आपका वचन सुना नहीं, प्रभु जी आप मुझसे बोलिए। इस प्रकार का दृष्टिकोण के साथ, इस प्रकार के तीव्र इच्छा के साथ, कीन डिजायर, एक तीव्र इच्छा के साथ जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर तब हमसे बात करता है, परमेश्वर तब हमारे दिल से हमारी आवश्यकता के अनुसार बात करता है। आपको मालूम है दाऊद राजा का रवैया कैसा था परमेश्वर के वचन के प्रति? एक पद पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, साम्स 119:97, भजन संहिता 119 उसका 97 पद, साम्स नंबर 119:97, कोई मेहरबानी से पढ़े।
आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कितनी प्रीति रखता, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता
है। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हाँ, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता। ये फर्स्ट ये वर्ड शुरू कैसे होता है? एक एक्सक्लेमेशन मार्क से। आहा, मतलब कोई भी चीज अगर आप ओरिजिनल इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, ये एक एक कीन डिजायर को प्रकट करता है। ये एक्सक्लेमेशन आहा है? किसी कुछ कुछ लोगों को खाना बहुत पसंद है, खाने के लिए जीते हैं। उनके सामने चिकन बिरयानी रख दे तो आहा है, अपने आप आवाज उठ, फिर मालूम पड़ता हो लोग बैठे आसपास है। मेरे जैसे लोगों के सामने मिठाई रख दे तो आहा, फिर मालूम पड़ा हो नेल्सन ब्रदर पास बैठे बोलने दीजिए। कुछ लोग हैं जिनको विश्वास ही बोलते हैं, उनके सामने परमेश्वर का वचन रखे तो क्या निकलना चाहिए मन से? ऐसा निकलता आज है? लेकिन दाऊद के भाषा में अगर कहे परमेश्वर का वचन विश्वासियों के सामने रखे तो आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कितना प्रसन्न हूं। दिन भर मेरा ध्यान किसमें लगा रहता है? क्रिकेट मैच में प्रभु जी, शेयर मार्केट में, मेरा नौकरी धंधे में नहीं। आहा, तेरा मैं तेरी व्यवस्था से कितनी प्रीति रखता हूं। दिन भर मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगा है। प्रभु जी मुझसे बोल, मेरे कान खुले हैं, मेरा जीवन खुला है, मेरा हृदय खुला है। प्रभु जी मुझसे बोल, मुझसे बातें कर। प्रभु जी मुझे आशीष दे, मुझे तेरी आवाज सुनना है, मुझे तेरा वचन सीखना है, मुझे तेरे वचन के अनुसार जीना है। इस प्रार्थना और लालसा के साथ अगर हम बैठे, जरूर परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। सुबह हमने रोमियो 8:37 पर आधारित होकर जैवंत जीवन बिताने के महत्व को और उसके अलग अलग पहलू को हमने समझने की कोशिश की, और वो अध्ययन हमने सुबह दिन में ही पूरा कर दिया था। और अभी जो शाम के सभाएं हैं, आज कल और परसों प्रभु ने चाहा तो मैं चाहता हूं कि कुछ कैरेक्टर स्टडीज आपके सामने रखने के लिए, कुछ ऐसे व्यक्तियों का जीवन जिसका जो जीवन हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक महान एग्जाम्पल है, एक अच्छा नमूना है। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन की एक खासियत है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों की अच्छी बातें भी प्रकट करता है और बुरी बातें भी प्रकट करता है। अच्छी बातें भी लिखा है, बुरी बातें भी लिखा है। इब्राहिम ने क्या ठीक किया, क्या अच्छा किया, वो भी लिखा है। इब्राहिम ने क्या गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए था, वो भी उसने किया, वो भी लिखा हुआ है। और वो इसलिए लिखा है जो अच्छा काम उन्होंने किया वो हम सीख सके, और जो गलत उन्होंने किया उससे हम बचकर सावधानी के साथ अपना आत्मिक जीवन बिता सके। लेकिन पुराने नियम के खास तौर से जब हम अध्ययन करते हैं, कुछ ऐसे चरित्रों को देखते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे व्यक्तियों का जीवन हम देखते हैं जिनके जीवन में एक भी नुक्स, एक भी गलती बाइबल में रिकॉर्डेड नहीं है। आज मालूम पड़ा ब्रदर, कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में एक भी नुक्स नहीं है। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके जीवन में एक भी पाप नहीं है, नहीं, कोई भी निष्पाप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति निष्पाप नहीं है। लेकिन इनको अगर कोई टाइटल देना है तो हम एक टाइटल ये दे सकते हैं, ये लोग निर्दोष लोग हैं। इनके ऊपर किसी बात के लिए हम दोष नहीं लगा सकते। ब्लेमलेस पीपल, पीपल बियॉन्ड रिप्रोच, जिनके जीवन में कोई ब्लेम, कोई गलत पॉइंट, अरे तुमने ये गलत कर दिया, ऐसा उनके जीवन में हम नुक्स नहीं देखते। पुराने नियम में कई एक ऐसे व्यक्ति हैं, मसलन तीन व्यक्तियों के जीवन पर मैं थोड़ी थोड़ी देर प्रकाश डालना चाहता हूं इन तीन दिनों में। आज शाम को हम संक्षिप्त रीति से यूसुफ के बारे में देखेंगे, उसका जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके जीवन में कोई नुक्स नहीं। और फिर कल हम प्रभु ने अगर हमको अवसर दिया, हम नहेमिया के जीवन के बारे में देखेंगे। नहेमिया का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके बारे में कोई नुक्स बाइबल में नहीं लिखा। और बाद में एक और व्यक्ति है पुराने नियम में जिसके जीवन में कोई नुक्स नहीं है, बता सकते हैं? दानियल। दानियल के जीवन में भी हम देखते हैं कोई नुक्स, कोई गलती, कोई गलत काम उसने दानियल ने किया, ऐसा करके कम से कम बाइबल में जिक्र नहीं। तो इन तीन व्यक्तियों का जीवन हम इन तीन शाम को संक्षिप्त रीति से देखने की कोशिश करेंगे और इनके जीवन से हम सीखेंगे कि हम भी अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं, हम भी अपना जीवन कैसा संवार सकते हैं। आज शाम को यूसुफ के जीवन में से हम संक्षिप्त रीति से देखेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 37। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक का अधिकांश भाग यूसुफ के जीवन का वर्णन करता है। 37 चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर 50 चैप्टर तक यूसुफ के जीवन का चरित्र हमें बाइबल में देखने को मिलता है। यूसुफ का जीवन हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक यूसुफ का जीवन हम देखते हैं। हम संक्षिप्त रीति से यूसुफ का जीवन अगर गहराई से देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो बातें हम सीख सकते हैं, सब पर जाने का समय नहीं, लेकिन कुछ एक बातें, खास बातें हम देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूसुफ के जीवन की एक खासियत, फर्स्ट गुड क्वालिटी और वर्च्यू ऑफ द लाइफ ऑफ जोसेफ। प्लीज रीड जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 5, उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसका 5 पद। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 5, कोई मेहरबानी से पढ़ के मेरी सहायता करे हिंदी में। जेनेसिस 37 वर्स 5,
और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उसे और भी द्वेष करने लगे।
यहां पर यूसुफ के जीवन का एक गुण या एक सद्गुण, एक वर्च्यू हम देखते हैं और वह यह है, जोसेफ वॉज अ ट्रांसपेरेंट पर्सन। यूसुफ एक पारदर्शी व्यक्ति था। पारदर्शी व्यक्ति मतलब जो यूसुफ के अंदर है वही यूसुफ के बाहर भी, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। मतलब छुपाने के लिए यूसुफ के जीवन में यूसुफ के पास कुछ भी नहीं था। दो प्रकार के ग्लास आते हैं, एक को हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ग्लास और दूसरे को हम बोलते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम आर पार देख सकते हैं किस क्या उस ग्लास के उस तरफ कौन है, कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सा रंग है, सब हमको साफ दिखता है। लेकिन अगर खिड़की में फ्रॉस्टेड ग्लास लगा है उस तरफ कौन है हमें दिखता नहीं, उस तरफ कौन व्यक्ति है हम देख नहीं सकते, कुछ भी दिखता नहीं है उसके पार। लेकिन ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर है तो उस पार आराम से दिखता है, ओ वो स्टीफन ब्रदर उधर खड़े। यूसुफ का जीवन इस प्रकार एक ट्रांसपेरेंट जीवन था, जो भी उसके अंदर था वो सब लोगों के सामने प्रकट था, सबको पता था। और अगर किसी को पता नहीं था यूसुफ खुद ही उसको सबको बता देता। यहां पर हम पढ़ते हैं यूसुफ ने एक सपना देखा और वो सपना लोगों को, उसके अपने भाइयों को उसने वर्णन किया। हम करते हैं क्या, कितने सपने देखते हैं है? मैं तो बहुत सपने देखता हूं, लेकिन एक देख कर दुख की बात यह है सुबह होते होते भूल जाता हूं क्या सपना देखा रहा। सपना देखते हैं लेकिन वर्णन करने वाले कम है। लेकिन यूसुफ इतना ट्रांसपेरेंट था, जो भी अच्छा हो जो भी बुरा हो सब कुछ बताता था। देखिए चैप्टर 37 वर्स 2 दो पद में हम पढ़ते हैं है? उसके अंतिम भाग में लिखा है, उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास यूसुफ पहुंचाया करता था। बुराई भी बताता था, अच्छाई भी बताता था, अपने मन में कुछ बात छुपाकर नहीं रखता। अरे ये मेरी बात है, मैं ये सबको बता नहीं सकता, मेरे को ये चीज छुपा कर रखना है। नहीं, ऐसा कुछ विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं छुपाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, उसका जीवन एक खुली किताब के समान था। कोई भी आकर झांक सकता है उसके जीवन के अंदर क्या है, कोई भी समझ सकता है उसके मन के अंदर क्या है, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा डबल स्टैंडर्ड जीवन यूसुफ का नहीं था। वो ट्रांसपेरेंट व्यक्ति था, जो भी था सबके सामने था, छुपा कर रखने वाली कोई बात नहीं थी। जब हम छुपा कर कुछ बात रखते हैं और वो बात जब सबके सामने खुल जाती है, प्रकट हो जाती है, तब हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, बहुत ही लज्जित होना पड़ता है। लेकिन अगर छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं तो किसी के सामने लज्जित होने की जरूरत नहीं पड़े। छुपाकर जो चीज, जो आदमी अपना जीवन छुपा छुपा कर बिताता है, वो जरूर एक दिन सबके सामने लज्जित होगा। लेकिन जो व्यक्ति ट्रांसपेरेंट जीवन, खुला जीवन, पारदर्शी जीवन बिताता है, उसको लज्जित होने के लिए, उसको शर्मिंदा होने के लिए कोई विषय नहीं है। क्यों? उसने कुछ छुपाया ही नहीं है। एक दिन एक छोटी बेटी अपनी दादी के पास आई। बेटी छोटी थी, नादान थी, इनोसेंट थी, कुछ नहीं मालूम था उसको। वो जो सिखाया था वही बोलती थी, वही करती थी। छोटी बेटी दादी के पास आई और बोली, दादी टें बोलो। तो बोले क्यों? नहीं आप बोलो तो सही। तो दादी ने बोला टें। तो देखा, ऊपर देखा उसने, कुछ हुआ ही नहीं। तो बोले नहीं दादी आप अच्छी तरह टें बोलो। तो दादी ने फिर से बोला टें। फिर ऊपर देखा, कुछ नहीं हुआ। तो दादी को बोला, दादी आप अच्छी तरह नहीं बोलते। अरे चुप कर, टें 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 सुबह सुबह करके रखा है, क्या बात है? बोले नहीं एक बार प्लीज लास्ट बार दादी टें बोल दो। अच्छा लंबा टें बोलना। तो दादी ने इस बार लंबा बोला टें, ऐसे बोला। फिर ऊपर देखा, कुछ नहीं, क्या बात है बेटी, क्या हुआ? नहीं वो क्या है ना, मेरे मम्मी ने मेरे को बोला था जब बुढ़िया टें बोलेगी तब हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा। समझ में आया? टें बोलना एक मुहावरा है हिंदी में। टें बोलना मतलब टपक जाना, मर जाना, मतलब मां ने सिखा कर रखा है जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तब हमको बहुत सारा उसका गड़ा हुआ धन सब हमको मिल जाएगा। तो इसको क्या समझ में आया? इसको जाकर इसने दादी से बोला, दादी टें बोलो। दादी ने बोला टें। ऊपर देखकर कोई पैसा आया नहीं, छुपा गड़ा धन मिला नहीं। जोर से बोलो, लंबा बोलो टें टें करके बोला, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तब वाले बात पूछने पर बोला, मां ने बोला था, मेरी मां ने बोला था जब ये बुढ़िया टें बोल जाएगी बहुत सारा धन। छुपा छुपा कर बेटी को बहुत कुछ सिखाया। वो छुपा कर जो कुछ भी सिखाया है, एक दिन जब बाहर आया तब समझ में आया, हो बहू का काम है। कितना लज्जित होना पड़ा उस बहू का। अजीज विश्वासियों, जब आप और मैं हम छुपा कर, हम रहस्य रीति से, गुप्त रीति से कुछ काम करते हैं, जरूर याद रखना, कोई भी चीज गुप्त चीज गुप्त नहीं रहेगी। हर गुप्त चीज परमेश्वर के प्रकाश के सामने आएगी और उस समय मालूम पड़ेगा, ओ स्टीफन, आप स्टीफन नहीं, मुझे नहीं मालूम आप में से कोई स्टीफन है या नहीं, मेरा नाम स्टीफन है। मैं एक बार मीटिंग के लिए एक जगह गया, मैंने बोला वो स्टीफन ऐसा आदमी है, मुझे नहीं मालूम ऑडियंस में से भी एक स्टीफन था। वो भाई बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। बोले ब्रदर आपको मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलना था। मैंने कहा क्या बोला मैंने ब्रदर? मैंने आपने बोला था ना स्टीफन ऐसा नहीं, स्टीफन ऐसा है ना स्टीफन है। अरे मैंने ब्रदर मेरा नाम भी स्टीफन है, तो मैं अपने बारे में, मैं जब स्टीफन बोल रहा हूं मैं अपना नाम ले रहा हूं, आप अपने नाम रखकर सोच सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे हमारे सारे गुप्त चीजें प्रकट होगी, तब मालूम पड़ेगा ओ स्टीफन ऐसा है। तब तक गुप्त रीति से छुपाकर हम कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के सामने बातें प्रकट होगी तब कोई भी किसी चीज से छुपा नहीं। ट्रांसपेरेंट जीवन, छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंट का दूसरा शब्द हम ऐसे भी कह सकते हैं, सिंसियर व्यक्ति था जोसेफ। सिंसियर, छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सिंसियर दो लैटिन शब्द से बना है, दो लैटिन शब्द है सिना सेरा, सिना सेरा। पुराने नियम में जब ये शिल्पकार पत्थर काट काट कर शिल्प बनाते थे, सफेद मार्बल पत्थर से ऐसा अलग अलग आकृति बनाते थे, कभी घोड़ा बनाते, कभी शेर बनाते हैं, कभी ऐसा कोई अलग जानवर बनाते थे, कभी किसी व्यक्ति का फोटो है बना। चाहते थे। मान लीजिए अगर मेरे को जाकर अपना मूर्ति बनाना है, मैं उसको बोलूंगा तुम मेरे को देखो, और वो मेरा चित्र पहले पेपर में बनाएगा और फिर हूबहू उसका पत्थर काट कर बनाएगा। फिर जब वो बनाता है, बनाते बनाते ध्यान से वो एक एक चीज, मेरा कान बनाता है, मेरा आंख बनाता है पत्थर से, मेरा नाक बनाता है, मेरा नाक थोड़ा लंबा है उसको मालूम है तो वो नाक और लंबा करता है, ध्यान से छेलता है, ध्यान से मारता है, ध्यान से मारने के बावजूद नाक का टिप मेरा टूट जाता है, ये नाक का नहीं वो पत्थर के नाक का टिप टूट जाता है। सेठ जी का नाक टूट गया क्या करें, तो वो क्या करता है सफेद पत्थर का बनाता है। एक और चीज होती है सफेद, वैक्स है, मोम, मोम, तो वो क्या करता है वो नाक के वो शेप में मोम को पिघला के वो नाक के टिप में ऐसे मोम चिपका देता है। और मैं आकर अगर अनजान आदमी हूं मैं आके देखूंगा, अरे वाह बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, थैंक यू, मैं पैसे दे के निकल जाऊंगा अगर मैं अनजान हूं तो। लेकिन अगर जानकार आदमी हूं तो क्या करूंगा, हमेशा मेरा बनाया हुआ मूर्ति लेने के लिए मैं दिन के समय जाऊंगा जब सूरज पूरी तरह चमक रहा है, और मैं देखता हूं अंदर उसने गोदाम में रखा है, बाहर निकालकर बताता है ओ वेरी गुड, तो मैं कहता हूं उसको इसको 5 मिनट के लिए धूप में रखो, 5 मिनट के लिए, पुराने जमाने की प्रथा है 5 मिनट के लिए धूप में रखो। धूप में रखते से क्या होता है वो मोम पिघलने लगता है, वो मोम जब पिघल जाता है नाक की टिप टूट जाती है, तब मेरे को मालूम पड़ता है इसने क्या काम किया है, इसने 2 नंबर का काम, इसने ईमानदारी का काम नहीं किया। इट इज नॉट सिन ऑफ तेरा, मेरे को ये मूर्ति नहीं चाहिए, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, सब कुछ व्यर्थ होकर मैं वापस लेकर चला जाता हूं। अजीज विश्वासियों, एक दिन परमेश्वर आपको और मुझे अपने दिव्य ज्योति के प्रकाश में खड़ा करेगा, तब मालूम पड़ेगा आपका और जीवन हमारा सिना सेना है या नहीं। ईमानदारी के साथ अगर हम जीवन बिताते हैं परमेश्वर की रोशनी के सामने, परमेश्वर का रोशनी हमारे जीवन के ऊपर जब पड़ेगा, परमेश्वर स्वयं इस बात को प्रकट करेगा, इस बात का ऐलान करेगा, हाँ ये मेरा दास, ये मेरी दासी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, दे आर सिना सीरा, सर्टिफिकेट देकर कहेगा ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, अपने पिता के आनंद में प्रवेश कर। क्या हम ईमानदारी के साथ जीवन बिताते हैं, क्या हम ट्रांसपेरेंसी के साथ जीवन बिताते हैं। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं ही हैड नथिंग टू हाइड, उसको छुपाने के लिए कुछ नहीं था, जो था सब सामने था, छुपाने के लिए अरे ऐसा करना अरे वैसा नहीं करना, छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक व्यक्ति था ऐसा एक चर्च में, उसको एक अच्छी आदत बोली आप बुरी आदत बोली है वो आपकी आजादी है, उसकी एक आदत थी जो भी अगर वो पास्टर साहब प्रचारक जो भी कुछ अच्छा पॉइंट बोलते थे वो हमेशा बोलते ऐसा रिएक्शन उनका होता था ओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ऐसा बोलते, कुछ भी अच्छा जब पास्टर साहब बोलते थे कोई अच्छा पॉइंट, जैसे यूसुफ के बारे में बोला ही वॉज अ वेरी सिंसियर मैन, ही वॉज अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैन, उसको अगर अच्छा लगा तो बोलते थे हालेलुया ऐसा वो रिएक्शन करते, तो ये पास्टर साहब को अच्छा नहीं लगता था बार बार बीजे हालेलुया बिल्कुल हालेलुया ऐसा अच्छा नहीं लगता, सब सब जगह खामोशी, बीच में एक ही आदमी हालेलुया ऐसा। तो एक दिन क्या हुआ वो बड़े प्रचारक उस असेंबली में उस चर्च में आ रहे थे, तब ये पास्टर साहब का थोड़ा घबराहट हो गया, ये बोलने ये सोचने लगे मेरे मैसेज में ही ये ऐसा बीच बीच में हालेलुया हालेलुया बोलता है, वो तो कितना अच्छा मैसेज देते हैं, उनका मैसेज शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारी नई बातें बहुत सारी अच्छी बातें होती है, ये तो बोल बोलकर सबको परेशान कर देगा मैं क्या करूं। फिर उनके मन में एक आइडिया आया, वो उनके घर में गए, उन्होंने कहा देखो अगले हफ्ते एक बड़े प्रीचर आ रहे हैं दिल्ली से, तुम एक काम करना बीच बीच में हालेलुया हालेलुया मत बोल, जरूर बोलना नहीं बोले भूलेगा नहीं, अरे नहीं मैं नहीं बोलू, सांस पकड़ के बैठ जाऊंगा नहीं बोलू, तो जाते जाते बोला देखो हालेलुया बोलना नहीं, अगर तुम हालेलुया नहीं बोलोगे मैं एक जोड़ी नया जूता तुमको दिलाकर, न्यू शूज नया जूता, चुप बैठने का बिल्कुल हालेलुया नहीं बोलो तो नया जूता मिलेगा, अरे थैंक यू बहुत खुश हो बहुत धन्यवाद, नया जूता मिलेगा हालेलुया नया जूता मिलेगा, नया जूता कोई हालेलुया नहीं, कोई प्रेज लॉर्ड, कोई आमीन नहीं, कुछ नहीं, गीत नहीं, कुछ, मैं चुप छूता चुप बैठू। वो सैटरडे को वापस पादरी साहब ने फोन किया, देखो कल संडे है, क्या करना है मालूम है ना? मेरे को चुप बने, जिप लगाना है मेरे होठ में, ले जिप लगाना है, लॉक लगाना है, मैं कुछ नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, जूता चाहिए। संडे आया, वो प्रचारक आए, प्रचार करना शुरू किया। इसके मन में बहुत अच्छा लगने लगा, बोलने की इसको हो रही है, लेकिन एकदम जूता चुपचाप। फिर बाद में कुछ अच्छा बोलते, चुप हो जाते, क्यों? जूता चाहिए, जूता चाहिए। बहुत कोशिश किया, 10 मिनट तक तो सांस पकड़ के बैठा, फिर हो रहा नहीं। फिर और अच्छा, जब पारी साहब बोलने लगे, क्लाइमेक्स में आए, ओ उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हो गया हालेलुया बोलने की, लेकिन सांस पकड़कर अंत में रहा नहीं गया। क्या बोला मालूम है लास्ट में? जूता मिले नहीं मिले हालेलुया, सबके सामने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, जूता मिले या ना मिले हालेलुया। कहने का मतलब, छुपाने के लिए कुछ मिले, कुछ भी चीज छुपाने के लिए नहीं है। अरे जूता मिले नहीं मिले छोड़ो तुम, हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद, तेरा वचन कितना महान है, जूते जाए बाढ़ में, जूते जाए कचरे में, हालेलुया धन्यवाद। छुपाने के लिए, क्या हमारे जीवन में छुपाने के लिए कुछ है? क्या आपके जीवन में कुछ एरिया है जो छुपाना पड़ता है लोगों से, जो चर्च के लोगों से छुपाना पड़ता है, जो पादरी साहब से छुपाना पड़ता है, जो प्रचारकों से छुपाना पड़ता है, जो दूसरे सह विश्वासियों से छुपाना पड़ता है? क्या आप ईमानदारी के साथ जीवन बिताते हैं? क्या आप यूसुफ के समान पारदर्शिता के साथ जीवन बिताते हैं? छुपाने के लिए प्रभु जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन एक खुली पुस्तक के समान है, जो अंदर है वो बाहर है, जो भी मैं अंदर हूं वो बाहर से दिखता है। प्रभु जी मुझे एक पारदर्शी व्यक्ति बनाइए, यूसुफ के समान एक ईमानदार व्यक्ति बनाइए, मेरे को छुपाने के लिए कुछ भी मेरे जीवन में। यूसुफ एक पारदर्शी व्यक्ति था, यूसुफ एक ईमानदार व्यक्ति था। एक और बात यूसुफ के जीवन में हम देखेंगे, चैप्टर 39 अध्याय, और हम इसमें से तीन पद हम पढ़ेंगे। वर्स 3, चैप्टर 39 वर्स 3।
और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है।
वर्स 21 पद,
और यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। वर्स 23 लास्ट वर्स 23 पद बंदगृह के दारोगा के वश में जो कुछ था क्योंकि उसमें से कोई उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था।
मुझे नहीं मालूम आपने गौर किया है कि नहीं, इन तीन पदों में एक सेंटेंस बार बार दोहराया गया है, वो क्या है? गॉड वॉज विथ हिम, परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। आज आलम क्या है? आज सब लोग परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या परमेश्वर हमारे साथ है? आज सब लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, क्या परमेश्वर हम पर विश्वास करता है? यूसुफ के जीवन का एक क्वालिटी था, गॉड वॉज विथ जोसेफ। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्च्यू टू हैव, गॉड वॉज विथ जोसेफ, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यूसुफ परमेश्वर के साथ था, वो तो था ही, लेकिन उससे भी एक बड़ा सद्गुण है, परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ, गॉड वॉज विथ जोसेफ। कितने धन्य बात है। एक छोटी सी लड़की अमेरिका में अपने पिता के साथ प्रेसिडेंट को देखने गई, प्रेसिडेंट उसके घर के सामने के सड़क से निकल रहे थे, निकलते निकलते निकलने के समय उसने कहा, डैडी मेरे को प्रेसिडेंट को देखना। तो देखने के लिए गए, उस समय प्रेसिडेंट का कारवां, बहुत सारे कारें ऐसे एक के पीछे एक गई, फिर बाद में प्रेसिडेंट की कार आई, प्रेसिडेंट ने हाथ हिलाया, उसके उसके फादर ने भी हाथ हिलाया, उसके बेटी ने भी हाथ हिलाया प्रेसिडेंट को देखकर। और जब सब चले गए, ये बेटी रोने लगी, बुक्का फाड़ फाड़ कर रोने लगी। तो इसके डैडी ने पूछा, बेटी रो रही क्यों है तू? कुछ नहीं बोला। तुमको प्रेसिडेंट, तुमने प्रेसिडेंट को देखा नहीं क्या? हाँ देखा। फिर तुम क्यों रो रही हो? तुम प्रेसिडेंट को देखने के लिए आई थी, तुमने प्रेसिडेंट को देखा, फिर तुम क्यों रो रही हो? उसने क्या जवाब दिया मालूम है? डैडी मैंने तो प्रेसिडेंट को देखा, लेकिन प्रेसिडेंट ने, मैंने प्रेसिडेंट को देखा क्या फायदा हुआ? सब लोग देखते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ने मेरे को नहीं देखा। हेलो बेबी नहीं बोला, प्रेसिडेंट ने मेरे को नहीं बोला। उसका दुख, उसका मलाल, उसके जीवन में उसका अफसोस। आज सब लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर सब पर विश्वास नहीं करता। ध्यान देने वाली बात है। पढ़िए जॉन चैप्टर 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:23-24। जॉन चैप्टर 2:23-24, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:23-24।
जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया।
बहुतों ने उसके काम देखकर उसके नाम पर क्या किया? विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। तब यीशु ने क्या किया?
परंतु यीशु ने अपने
परंतु मतलब कुछ बात विपरीत जो होती है, बट इंग्लिश में बोलते हैं परंतु। हाँ,
यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा।
यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं, बस यीशु ने अपने आप को उनके हवाले नहीं किया। मतलब दूसरी भाषा में अगर कहें, बहुतों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह ने किसी पर भी विश्वास नहीं किया। कितनी गंभीर बात है। मत्ती रचित सुसमाचार में ही आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, उस दिन अनेक लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु जी हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार के काम किए, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चंगाई के काम किए, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार के काम किए। प्रभु उनको देखकर क्या कहेगा? मैं तुमको जानता नहीं, तुम कौन हो? ए दुष्टो, मैं तुमको जानता नहीं हूं, तुम जाओ उस नरक की झील में जाओ। आई नेवर नो यू, मैं तुमको जानता नहीं हूं। प्रभु जी हमने तेरे नाम से किया है, प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। अजीज विश्वासियों, कहीं ऐसा हाल हमारा तो नहीं है? हम सब प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या प्रभु हम पर विश्वास करता है? दो शब्द हैं, एक है विश्वासी, एक है विश्वास योग्य। विश्वासी मतलब वो जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, और विश्वास योग्य वो है जिस पर परमेश्वर विश्वास करता है। बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास योग्य बहुत कम है। बहुत सारे विश्वासी हैं, सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह सब पर विश्वास नहीं करता। प्रभु जानता है, आगे उसका 25 पद में क्या लिखा है, वर्ष 25, प्रभु ने उन किसी पर विश्वास क्यों नहीं किया?
क्योंकि वो सबको जानता।
या दूसरे भाषा में ऐसा कहे, वो सबका मन जानता था। और क्या लिखा है आगे?
और उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे।
हाँ, उसको कोई प्रयोजन नहीं था बताने के लिए, अरे प्रभु जी ये स्टीफन ब्रदर हैं, ये राजस्थान के हैं, ये बहुत अच्छे हैं। अरे मेरे को किसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ स्टीफन कौन है, मैं जानता हूँ फलाना कौन है, मैं जानता हूँ उसका जीवन कैसा है। सबके सामने कुछ होगा, लेकिन उसका सच्चाई मैं जानता हूँ, उसकी हकीकत मैं जानता हूँ। विश्वासी है, लेकिन विश्वास योग्य नहीं। सब पर वो सबके सामने अच्छा विश्वासी हो सकता है, लेकिन मैं अपना भरोसा उस पर नहीं रख सकता। ऐसा नहीं लिखा है कि यूसुफ परमेश्वर के साथ था, लेकिन ऐसा लिखा है एक बार नहीं तीन बार, परमेश्वर यूसुफ के साथ। गॉड वॉज विद जोसेफ। इसलिए फिरौन भी एक बहुत बड़ी गवाही यूसुफ के बारे में देता है। पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 41, उत्पत्ति उसका 41 अध्याय और उसका 38 पद। चैप्टर 41 वर्स 38।
तो फिरौन ने अपने अपने कर्मचारियों से कहा,
फिरौन ने अपने मंत्रियों से या अपने कर्मचारियों से कहा, क्या कहा?
कि क्या हमको ऐसा पुरुष देता ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है?
क्या हमको हमारे राज्य में ऐसा पुरुष मिल सकता है जिसमें जीवते परमेश्वर की आत्मा वास करती है? फिरौन मंत्रियों के साथ छत पर खड़ा है, यूसुफ को उंगली दिखाकर कहता है, सुनो कर्मचारियों, सुनो मंत्रियों, क्या हमारे देश में ऐसा एक व्यक्ति मिल सकता है जिसमें जीवते परमेश्वर की आत्मा वास करती है? ऐसा नहीं लिखा है जो परमेश्वर के साथ रहता है, लेकिन ऐसा कहता है जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। अजीज विश्वासियों, यह बड़ा सवाल नहीं है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है क्या परमेश्वर आप पर विश्वास करता है कि? और परमेश्वर विश्वासियों पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर विश्वास योग्य पर विश्वास करता है। इंग्लिश में अगर कहूं तो ये दो विश्वासी और विश्वास योग्य को हम ऐसे कह सकते हैं, बिलीवर्स एंड फेथफुल्स। ऑल आर बिलीवर्स बट देर आर वेरी फ्यू फेथफुल्स, एंड गॉड डजंट काउंट ऑन बिलीवर्स, गॉड काउंट्स ऑन फेथफुल्स। परमेश्वर विश्वासियों पर भरोसा नहीं रखता, परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों पर अपना भरोसा, अपना ईमान, अपना 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 भरोसा वो रखता है। मुझे नहीं मालूम आपने ये कहानी सुनी है कि नहीं, एक लड़का था, उसका नाम था जोसेफ, उसको शॉर्ट फॉर्म में लोग जो करके बुलाते, जो। वो इतना गरीब था, एक बहुत गरीब परिवार से था और खुद भी बहुत गरीब था, इसलिए लोग उसको पुअर जो बुलाते थे, गरीब जो, पुअर जो करके बुलाते। उसको उसका एक अच्छा आदत था, वो प्रभु यीशु मसीह का भय मानता था, प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य व्यक्ति था। अनपढ़ आदमी था, निर्धन आदमी था, अयोग्य आदमी था, कोई पैसा धंधा उसके पास नहीं था, लेकिन परमेश्वर के नजर में कौन था? विश्वास योग्य व्यक्ति था। उसकी एक आदत थी, वो जिस शहर में रहता था वहां पर एक बहुत बड़ा चर्च था, उस चर्च में रोज सुबह 7 बजे वो जाता था, चर्च बैरर था वहां पर, वो चर्च का गेट उसके लिए खोलता था और वो आइल में से, बीच में से वो बाहर अपना जूते उतार कर वो अंदर आता था अपने फटे पुराने कपड़े में। रोज सुबह कितने बजे? 7 बजे वो आता था, अंदर जाता था, सामने ऑल्टर के पास जाकर वो घुटने टेकता, उसके सर पर एक फटी पुरानी टोपी होती थी, वो टोपी निकालकर घुटने टेक कर, हाँ सर झुकाकर वो कुछ मन में बोलता था और उठकर चला जाता। आज एक आधे सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए उसको प्रार्थना करना नहीं आता, उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता, वो अनपढ़ व्यक्ति है, उसके पास पैसा कौड़ी नहीं है, लेकिन प्रभु के प्रति ईमानदार था, विश्वास योग्य था। रोज सुबह 7 बजे उस चर्च में आकर वो एक छोटा सा कुछ गुनगुनाता था, विस्पर करता था अपने मन ही मन, रोज सुबह 7 बजे। एक दिन चर्च बैरन ने उसको ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा, उसने मन में सोचा ये गरीब आदमी रोज चर्च में आता है, क्या मालूम क्यों आता है, क्या पता इसका मकसद क्या है, कल को अगर चर्च में से कुछ चीज गायब हो जाए तो जवाब किसको देना पड़ेगा? मेरे को देना पड़ेगा। इसलिए उसने उस पुअरजो को देखकर कहा, पुअरजो डोंट कम टू चर्च टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से इस चर्च में तुम मत आना, आज ये तुम्हारा लास्ट विजिट है, कल से तुम आओगे मैं चर्च के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खोलूंगा। ठीक है साहब, बोलकर वो गया अंदर, जूते उतार कर सामने गया, घुटने टेका, सिर से टोपी निकाला, सिर झुकाकर आंख बंद करके कहा, कुछ अपने मन में विस्पर किया और उठकर चला गया। कुछ दिनों के बाद चर्च वालों को खबर मिली, पुअरजो का रोड एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट। तब वो सोचने लगा, जब मैंने उसको चर्च में आने से मना करके ठीक काम किया कि नहीं, वो बेचारा रोज आता था, एक मिनट, एक सेकंड, दो सेकंड का कुछ ना कुछ बोलता था मन ही मन में, वो चला जाता था। मैंने उसको बोला तुम चर्च में मत आना, उसको बहुत अफसोस होने लगा मन में, उसका विवेक उसको दोष देने लगा। उसने कहा मैं जाकर मिलकर आऊंगा। वो सरकारी अस्पताल में गया, जनरल वार्ड में कॉर्नर में एक बेड में पुअर जो अकेला पड़ा है, बाकी सारे बेड्स के आसपास रिश्तेदार है, दोस्त है, लोगों के, मरीजों के रिश्तेदार और दोस्त मित्रगण खड़े हैं, लेकिन एक ही बेड है जहां पर सिर्फ पेशेंट पड़ा है, पेशेंट के आसपास कोई भी नहीं। वो पुअर जो है वो चर्च पैरल उसके पास पास कोने में गया और कहा, पुअर जो, डिड यू रिकॉग्नाइज मी? पुअर जो, क्या तुमने मुझे पहचाना? बोलने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने पहचाना आपको। फिर वो चर्च बैरर बोलने लगा, मैं वही चर्च बैरर हूं जिसने तुम्हें चर्च आने से मना किया। फिर मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, मैंने सोचा मैं तुमको देखने के लिए आऊंगा। तुम यहां पर अकेले हो? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं अकेला हूं। क्या तुम्हारे पास कोई नहीं है? नहीं कोई। क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं मेरे कोई रिश्तेदार नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है? नहीं मेरे पास कोई दोस्त नहीं। तब उस चर्च बैरर ने कहा, ओ देन यू मस्ट बी फीलिंग लोनली इजंट इट? तब तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होता होगा, है ना? तब उसने हिम्मत जुटाकर, ताकत जुटाकर अपना आवाज खोलकर कहा, साहब आई एम अलोन बट आई एम नॉट लोनली। मैं अकेला हूं लेकिन अकेलापन महसूस नहीं करता। मैं रोज सुबह 7 बजे विश्वास योग्यता के साथ आपके चर्च में आता। मैं अनपढ़, मैं निर्धन हूं, मेरे पास कोई पैसा कौड़ी नहीं है, लेकिन प्रभु के प्रति मैं सच्चा हूं। मैं रोज सुबह 7 बजे आपके चर्च में आता था। मेरे को प्रार्थना करना नहीं आता, मेरे को बाइबल पढ़ना नहीं आता, लेकिन प्रभु से मैं बहुत प्रेम करता हूं। मैं रोज सुबह आपके चर्च में आता, जूते उतारकर अंदर जाता, सामने आकर जाकर अपने सिर से टोपी भी निकालता, घुटने टेक कर अपने मन में मैं बोलता, क्योंकि मुझे डर था कि कोई सुन ना ले। मैं मन में रोज यही बोलता था, रोज सुबह 7 बजे मैं ये बोलता था, गुड मॉर्निंग जीसस, इट्स मी जो, गुड मॉर्निंग यीशु मसीह, मैं जो हूं। बस इतना सा बोलकर मैं चला जाता, बाकी प्रार्थना कैसे करना मुझे नहीं मालूम, बाइबल कैसे पढ़ना मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु से बहुत प्रेम था, इसलिए रोज सुबह 7 बजे आकर मैं कहता था, यीशु मसीह गुड मॉर्निंग प्रणाम, मैं जो हूं। बस इससे ज्यादा क्या बोलना मुझे नहीं मालूम। मैं वापस घर चला जाता था। आपने मुझे चर्च आने से मना किया, उसके बाद से मैं चर्च नहीं जा पाया। फिर मैं जब रोड में जा रहा था, किसी ने मुझे टक्कर मार दिया, बेहोश में मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं मालूम कि सज्जन ने आकर मुझे अस्पताल में भर्ती किया। आज मैं चर्च आने की अवस्था में नहीं हूं, आज मैं अकेला हूं, लेकिन अकेलापन महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि रोज सुबह 7 बजे अपने कान में मैं एक आवाज सुनता हूं, जो गुड मॉर्निंग, मैं यीशु मसीह। रोज सुबह 7 बजे मैं जाकर बोलता था, गुड मॉर्निंग यीशु, मैं जो हूं। आज जब मैं नहीं जा पा रहा हूं, रोज सुबह 7 बजे मैं एक आवाज सुनता हूं, जो गुड मॉर्निंग, सलाम जो, मैं यीशु, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम विश्वास योग्य हो, तुम सच्चे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम डरना नहीं। अजीज विश्वासियों, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं? यूहन्ना 2 अध्याय में से हमने देखा, बहुत लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, बहुत लोगों ने प्रभु पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह ने किसी पर भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो सबका मन जानता है। बाहर से हम कुछ भी हो सकते हैं, बाहर से हम सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन का खोखलापन, हमारे मन की अवस्था, हमारे मन की बातें सब प्रभु के सामने नग्न और बेपर्दा है। इसलिए प्रभु केवल उन पर ही विश्वास करता है जो ईमानदार है, जो विश्वास योग्य है। विश्वासी नहीं, विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यूसुफ परमेश्वर के साथ था, लेकिन ऐसा लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ। क्या परमेश्वर आज आपके साथ है? क्या परमेश्वर आज आप पर भरोसा कर सकता है? क्या परमेश्वर आज आप पर कुछ चीज के लिए, कैन गॉड रिलाय ऑन यू? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता है? अपने आप को आप जांचे परखे। एक और क्वालिटी जोसेफ का, चैप्टर 39:9, उत्पत्ति 39 अध्याय उसका 9 पद।
इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, तो भला मैं इतनी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनू?
जोसेफ वॉज ए होली मैन, यूसुफ एक पवित्र व्यक्ति था। यहां पर पूरा बचन, पूरा अध्याय आगे से आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा किस प्रकार यूसुफ के बॉस की पत्नी उसके साथ व्यभिचार का पाप करने के लिए उसको बुलाती थी और पाप करवाना उससे चाहती थी। लेकिन यूसुफ कहता है, मैं परमेश यह दुष्टता करके मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी कैसे बन, क्यों कर बन। यूसुफ एक पवित्र व्यक्ति था, जोसेफ वॉज ए होली मैन, एक पवित्र व्यक्ति था। आगे बढ़ने से पहले मैं पवित्रता के बारे में एक बात आपको बता दूं, होलीनेस इज एन इनर क्वालिटी। ये पवित्रता जो है एक अंदरूनी सद्गुण है, ये बाहर की बातों पर निर्भर नहीं करता, ये एक अंदर का सद्गुण है। एंड होलीनेस इज अ पर्सनल प्रोडक्ट, ये पवित्रता जो है व्यक्तिगत जीवन की उपज है। कई बार कई लोग देते बोलते हैं ऐसा बहाना, अरे हमारे चर्च में कुछ नहीं होता ब्रदर, इसलिए पवित्र जीवन हम नहीं बिता सकते। चर्च के ऊपर आपकी पवित्रता आधारित नहीं है, हैं? आपके सह विश्वासियों के ऊपर आपकी पवित्रता आधारित नहीं है। यूसुफ कौन से चर्च में था, यूसुफ के समय कौन सा मंदिर था, यूसुफ के समय कौन से दोस्त थे, यूसुफ के साथ कौन से सह विश्वासी थे, कोई भी नहीं था, वो अकेला था, फिर भी वो कौन था, वो पवित्र व्यक्ति था। आर वी होली पीपल ऑफ गॉड, क्या हम परमेश्वर के सामने पवित्र लोग हैं। अब देखिए यूसुफ को व्यभिचार करने का पाप करने के लिए वो स्त्री बार बार पोतीपर की पत्नी उसको बोलती थी, लेकिन उसने पाप नहीं किया, पाप करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, नहीं तो भी कम से कम 7 कारण था यूसुफ पाप कर सकता था, फिर भी उसने पाप नहीं किया। मैं जल्दी से आपको बताता हूं 7 कारण कौन कौन से थे। पहला कारण, ही लिव्ड इन सच अ सोसाइटी, ऐसे समाज में वो रहता था। आज का समाज कैसा है, एक पुरुष एक स्त्री, है ना, एक पुरुष और एक स्त्री, पति पत्नी जब साथ घूमते हैं कोई कुछ बोलता है क्या, हो साथ घूम रहे, नहीं कोई कुछ नहीं बोलता, क्यों, आज का समाज ऐसा है। उस समय का समाज कैसा था मालूम है, एक पुरुष अनेक स्त्री, एक पुरुष अनेक स्त्री, जब एक पुरुष अनेक स्त्री के साथ घूमता था लोग ऐसा नहीं बोलते थे वो देखो कितनी स्त्रियां थी, नहीं उस समय की प्रथा ऐसी थी, उस समय ऐसा ऐसा समाज था। इसलिए अगर यूसुफ ये पाप भी करता यूसुफ को कोई बोल नहीं सकता, ठीक है। दूसरा कारण, हिज बॉस वाइफ वॉज आस्किंग हिम, उसके मालिक की पत्नी उसको बोल रही थी, और मालिक के पत्नी का बात का इनकार करना मतलब क्या है, नौकरी से हाथ धो। वो क्या बोल सकता था, बॉस की वाइफ ने मेरे को बोला इसलिए मैंने किया, मैं उनका इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उसने नहीं किया। थर्ड रीजन, जिस वक्त स्त्री ने बोला उस समय उसका आदमी उसके घर में नहीं था, सिर्फ वो स्त्री और यूसुफ था, हिज बॉस वॉज नॉट एट होम, उसका बॉस उस समय घर पे नहीं था, पोतीफर उस समय घर पे नहीं था, सिर्फ पोतीफर की पत्नी और यूसुफ था। स्वर्णिम मौका था, चाहता तो वो कर सकता था, फिर भी उसने पाप नहीं किया। रीजन नंबर 4, ही कुड हैव थॉट आई एम यंग हैंडसम एंड आई हैव नॉर्मल डिजायर्स सो ही कुड हैव सिन, वो सोच सकता था मैं जवान हूं, मैं सुंदर हूं, स्वाभाविक आवेग मेरे जीवन में मेरे शरीर में भी है, मैं ये काम करूं तो इसमें कौन सा गलत है, वो कर सकता था, फिर भी उसने नहीं किया। रीजन नंबर 5, उसके पिता के पास कितनी पत्नी थी, हाउ मेनी वाइव्स हिज फादर हैड, किसी को पता है, 4, हिज वाइफ हैड 4, हिज फादर हैड 4 वाइव्स, वॉट इफ ही हैज 4 वाइव्स, अगर यूसुफ भी इस पोतीफर की पत्नी के साथ पाप करे यूसुफ का पिता भी उसको बोल नहीं सकता यूसुफ तुमने गलत काम किया, वो कर सकता था। रीजन नंबर 6, ही वॉज लिविंग ऑल अलोन, वो अकेला मिस्र देश में रहता था, साथ में सह यहूदी नहीं है, साथ में मां बाप नहीं है, साथ में भाई बहन नहीं है, साथ में चाचा मामा नहीं है, साथ में ताऊ को ताऊजी नहीं है, साथ में कोई रिश्तेदार नहीं है, जान पहचान का कोई भी नहीं है, और तो और घर के लोग भी घर में नहीं है, वो अकेला है, फिर भी उसने पाप नहीं किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही नेवर हैड अ फैट बाइबल लाइक योर्स एंड माइन, आपके और मेरे समान एक मोटी बाइबल उसके पास नहीं थी जिसको पढ़कर वो अपना जीवन में पवित्रता ला सकता था। पाप करने के पर्याप्त कारण थे, लेकिन एक ही कारण था पाप नहीं करने का, वो क्या कारण था, सबके लिए ये काम, ये व्यभिचार का काम ठीक है, लेकिन एक ही व्यक्ति की नजर में गलत है, वो कौन व्यक्ति है, परमेश्वर। इसलिए इस वर्स 9 में क्या कहता है, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके किसका अपराधी बनूं, परमेश्वर का अपराधी। पोतीफर की पत्नी तुम्हारे नजर में ये ठीक है, तुम्हारे पति की नजर में ये ठीक है, मेरे पिता की नजर में ये ठीक है, समाज की नजर में ठीक है, पूरी दुनिया के सामने ये ठीक है, लेकिन अगर परमेश्वर के सामने गलत है तो वो मेरे लिए भी गलत है। मैं वो काम परमेश्वर के विरुद्ध में गलत करके परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा। यूसुफ कौन था? यूसुफ एक पवित्र व्यक्ति था। पहला पत्रस पहला अध्याय 16 पर उसने निभाया। क्या लिखा है? पहला पत्रस पहला अध्याय 16 पद में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। पवित्र होने के लिए क्या कारण है? एक ही कारण है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमको भी पवित्र, चाहे हमारे सह विश्वासी पवित्र हो या ना हो, चाहे हमारे चर्च के दूसरे लोग पवित्र हो या ना हो, चाहे हमारे दूसरे लोग पवित्र हो या ना हो, चाहे हमारे अगुए पवित्र हो या ना हो, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति पवित्र हो या ना हो, चाहे मेरे माँ बाप पवित्र हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर पवित्र है। मुझे विश्वासी होने के नाते पवित्रता मेरे जीवन में रखना बहुत जरूरी है। यूसुफ कौन था? यूसुफ पवित्र व्यक्ति था। वो परमेश्वर के उपस्थिति में अपना जीवन बिताता। He lived in God's presence। जब मैं संडे स्कूल में था, एक गीत मैंने सीखा था, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को भी शायद आता होगा, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, खबरदार छोटा मन क्या सोचता, तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटा मुंह तू क्या बोलता है, खबरदार, केयरफुल, खबरदार, तेरा बाप आसमान से चाहे कोई देखे या ना देखे, तेरे साथ कोई है या ना है, तू अकेला होगा, लेकिन तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार तुम्हारे जीवन में तुम क्या कर रहे हो। सबके नजरों में ठीक होगा, लेकिन अगर परमेश्वर के नजरों में गलत है तो वो मेरे नजर में भी गलत होना चाहिए। चाहे सब अपवित्र हो जाए, अगर परमेश्वर पवित्र है, विश्वासी होने के नाते मुझे भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। अगर पवित्रता का जीवन नहीं बिताएगा, पूरे बाइबल पढ़ना आसान है, गीत गाना आसान है, प्रचार करना आसान है, लोगों के लिए प्रार्थना करना आसान है, लेकिन पवित्रता के साथ जीवन नहीं बिताएंगे, ये सब कुछ व्यर्थ है। बहुत पहले समय पहले की बात थी, इंग्लैंड में एक बहुत मशहूर एक्टर था, अभिनेता है, एक्टर, बहुत समय पहले की बात है, उस समय सब अधिकतर लोग क्रिश्चियंस थे, अभी भी इंग्लैंड में बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस हैं, अमेरिका के समान। तो वो एक्टर एक बहुत शाही महल में आया और बहुत ही शाही परिवार, रॉयल प्रोग्राम था, और उस समय बहुत सारे गण्यमान्य नागरिक बैठे थे, और ये एक्टर को बुलाया, स्टेज पर आया ये एक्टर, इसने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट शुड आई परफॉर्म फॉर यू टुनाइट, भाइयों बहनों मैं आपके लिए क्या परफॉर्म करूं, क्या करूं आज शाम को, आप बोलो मैं वो करूंगा। एक्टर बहुत नामी गिरामी एक्टर। तो लोगों ने कहा, सर प्लीज रिसाइट साम्स 23 फॉर अस, हमारे लिए 23 भजन बोलकर सुनाओ। तो उस समय वहां के लोगों के लिए 23 भजन कोई बड़ी बात नहीं, सबको, सब जानते थे, एक्टर्स भी जानते हैं 23 भजन में क्या लिखा, लेकिन उसका अंदाज अलग था, उसकी शैली अलग थी, अपने अलग अंदाज में, अलग खूबसूरत आवाज में उसने बोलना शुरू किया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, पूरी 6 पद उसने बोलकर सुना दी। तो जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तालियों की गड़गड़ाहट, वाह क्या आवाज, क्या अंदाज है, क्या क्या अदाएं हैं, क्या 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 खूबसूरती के साथ बोला, वाह 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 वाह। जब सब तालियां थम गई, जब सब आवाज शांत हो गई, पीछे से बहुत बुजुर्ग व्यक्ति उठ के सामने है, वयोवृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्गी के आलम में एक लकड़ी रखकर उसके सहारे पर चल चलकर स्टेज पर आए। जब वो स्टेज पर आए, इस एक्टर ने उनका हाथ पकड़कर स्टेज के ऊपर लेकर आए उनको ध्यान से, फिर माइक उनको दिया। उस बुजुर्ग ने क्या कहा मालूम है? उस बुजुर्ग ने भी 23 भजन बोलकर सुनाया, साम्स 23 बोलकर सुनाया, 23 जबूर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, पूरा 6 पद उस बुजुर्ग ने भी बोला। जब बुजुर्ग ये 23 भजन बोल रहा था, ये एक्टर बुजुर्ग को ऐसे देख रहा था ध्यान से, पूरा छह पद बोलने के बाद में उसने देखा, पहले कानों से सुना, एक भी ताली नहीं बजी, एक भी ताली नहीं बजी। तब उसने अपनी आंखें इस बुजुर्ग से हटाकर सब लोगों के आंख में से ध्यान से देखा, उसने अपने घोर आश्चर्य के लिए देखा, एक भी सूखी आंख नहीं, सभी आंखें नम हो गई, सभी आंखों में आंसू थे। तब उन्होंने वापस वो माइक बुजुर्ग से अपने पास लिया और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने भी 23 भजन संहिता बोला, इन्होंने भी 23 भजन संहिता बोला, मैंने आपके कानों को स्पर्श किया, इन्होंने आपके दिल को स्पर्श किया, और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं 23 भजन संहिता जानता हूं और ये व्यक्ति 23 भजन संहिता के चरवाहे को जानते हैं। हम किसको जानते हैं? हम 23 भजन जानते हैं या 23 भजन के चरवाहे को जानते हैं? यूसुफ 23 भजन को जानने वाला व्यक्ति नहीं था, यूसुफ भजन के चरवाहे को जानने वाला व्यक्ति था। सारे लोगों के लिए बातें सही थी, परमेश्वर के लिए जो बात गलत थी उसने कहा वो बात मेरे लिए भी गलत है। पवित्रता के साथ उसने जीवन बिताया। फाइनली चैप्टर 50:20 अंत में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 20 पद, जेनेसिस चैप्टर 50:20।
इस दिन तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, और परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिसे वो ऐसा करे, ऐसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं।
जोसेफ वॉज अ मैन ऑफ फेथ, यूसुफ विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था। अपने भाइयों को देखकर, बुजुर्गी की अवस्था में देखकर कहता है, तुमने मेरे लिए बुराई की लेकिन परमेश्वर ने उसमें भलाई उत्पन्न की। ये मेंटेड फॉर ईवल बट गॉड टर्न्ड इट आउट टू बी गुड। तुमने बुराई के लिए युक्ति किया लेकिन उस युक्ति में भी परमेश्वर ने भलाई किया। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर को सारा श्रेय देने वाला व्यक्ति था यूसुफ। उसके जीवन में बहुत दुख आए, उसके जीवन में बहुत तकलीफ आए। आप पूरा 37 अध्याय से 50 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, दुखों से घिरा हुआ था जीवन उसका। कुछ किया नहीं, कुछ गलती नहीं किया, फिर भी उसको जेल जाना पड़ा। कुछ भी गलत काम किया नहीं, फिर भी उसको दुख सहना पड़ा। तमाम दुखों से, तमाम परेशानी से, तमाम आंसुओं और मृत्यु की तराई से होकर वो चला, फिर भी उसके मन में एक विश्वास था, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मेरे लिए आश्चर्यकर्म करेगा, वो मेरे लिए भलाई करेगा। इसलिए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम कुछ दिनों में, मरने के बिल्कुल पहले वो अपने भाइयों को देखकर कहता है, तुमने बुराई सोची लेकिन परमेश्वर ने भलाई। मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, मुझे मालूम था यह दुख करने के लिए मेरे जीवन में कोई पाप नहीं किया है, यह दुख यह तकलीफ मेरे जीवन में आने के लिए मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर पर मैंने अंतिम समय तक विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया, पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। तुमने मेरे लिए बुराई सोचा, परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई उत्पन्न। इसके पहले भी कई बार वो बात ये बात बोल चुका है, 45 अध्याय जो हम पढ़ते हैं वहां पर भी यूसुफ यही कहता है, परमेश्वर ने मुझको तुमसे आगे भेजा ताकि मैं तुम्हारे लिए अन्न को तैयार कर सकूं, तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर सकूं ताकि तुम अकाल में मरकर नाश नहीं हो जाए। परमेश्वर पर विश्वास करने, अजीज व्यक्तियों, अजीज विश्वासियों, क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हमारे तमाम दुखों के बीच में, हमारे तमाम तकलीफों के बीच में क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? दाऊद का जीवन का अनुभव भी यही सही था, तमाम तमाम उसके दुख और परेशानी के बीच में भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। बड़ी मेहरबानी से साम्स नंबर 56 भजन संहिता 56 उसका 5 से लेकर 11 पद तक या 10 पद तक हम पढ़ेंगे। साम्स नंबर 56:5-10 भजन संहिता 56 उसका 5 से लेकर 10 पद तक।
वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा लगा
ध्यान से सुनिए, दाऊद का अनुभव, हाँ, वे दिन भर मेरे शब्द का उल्टा अर्थ समझते हैं,
उनकी सारी कल्पनाएं मेरी की बुराई करने की होती,
सारी कल्पना मेरी बुराई के लिए है,
वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और चित कर बैठते हैं, वे मेरे साथ लगाए बैठे हो, क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगी? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे 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 फिरने का हिसाब रखता, तू मेरे आंसुओं को अपनी खुशी में रख ले।
तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। और
क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है?
उनकी चर्चा, उनका रिकॉर्ड सब तेरे पुस्तक में है प्रभु जी। मेरे जीवन का सारा हाल तेरे पुस्तक में रिकॉर्डेड है प्रभु जी, मेरा विश्वास है। हाँ,
तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, ये मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से भी उसके वचन की प्रशंसा करूंगा।
यह मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरी ओर, ये मेरा विश्वास है। सारे लोग मेरी बुराई करते हैं, वे मेरे बातों का उल्टा अर्थ समझते हैं, वे मेरा पीछा करते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन प्रभु जी मेरे जीवन का हाल सब तू जानता है। हर एक आंखों का जो बूंद मेरे आंखों से गिरता है वो सब तूने अपनी कुप्पी में संभाल कर रखा है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब अपने पुस्तक में लिख कर रखता है। मैं जानता हूँ तू मेरी ओर है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी तू मेरी ओर है, तो मुझे चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अजीज विश्वासियों, यूसुफ भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था, और यूसुफ ने अपने जीवन में से दूसरा कुरिन्थियों 5:7 पर पूरा निभा के बताया। क्या लिखा है पढ़िए, 2 Corinthians 5:7। पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन यूसुफ ने अपने जीवन में से उसे निभा कर दिखाया। 2 Corinthians 5:7, 2 Corinthians 5:7 पर पौलुस क्या कहता है? हम तो
क्योंकि हम रूप को देखकर हैं,
हम रूप को देखकर नहीं चलते
और विश्वास से चलते हैं,
लेकिन विश्वास से चलते हैं। हम देखकर नहीं चलते हैं, देखकर चलना तो सब लोग चल सकते हैं। जब सब कुछ अच्छा है, जब सब ठीक है, तब प्रभु पर विश्वास करना बहुत आसान है, लेकिन जब सब विरुद्ध है, सब विपरीत है, सब विषम परिस्थितियां हैं, तब प्रभु पर विश्वास करना उतना आसान नहीं। पौलुस कहता है हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास के साथ चलते हैं। यूसुफ भी अपने जीवन से कह सकता था, अंतिम पड़ाव में वो यही कहता है, मैं रूप को देखकर नहीं चला, अगर रूप को देखकर चलता तो दुख और मुसीबत और जेल में रहने के समय कब का प्रभु को त्याग दिया होता, लेकिन रूप को देखकर नहीं चला, विश्वास के साथ चला। तुमने मेरे लिए हानि सोची, लेकिन परमेश्वर ने उसमें भलाई उत्पन्न की। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसका टाइटल है नोइंग गॉड, उसके ऑथर है J.I. Packer। ये नोइंग गॉड बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस में एक परमेश्वर के थियोलॉजी स्टडीज के लिए टेक्स्ट बुक के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। उस नोइंग गॉड में J.I. Packer एक इलस्ट्रेशन देते हैं। आज सुबह भी मैं बहनों से वो इलस्ट्रेशन का जिक्र कर रहा था, और J.I. Packer ऐसा कहते हैं, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो कई बार ऐसे होता है हमारा ट्रेन स्टेशन के पास आते आते रुक जाता है। देखा है ना, स्टेशन के पास, इंडियन लैंग्वेज में बात करें, आउटर पर आकर रुक जाता है, बोरीवली के आउटर में आके बहुत गुस्सा आता है। यहां से पैदल जाएंगे तो जल्दी टाइम पर पहुंच सकते, ये ट्रेन अभी क्यों फालतू में मेरा ट्रेन रोक कर रखा। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं दूसरा ट्रेन सामने से गुजरता है, तब हमको समझ में आता है क्या है, ओ मेरे ट्रेन के प्लेटफॉर्म में दूसरा ट्रेन खड़ा था। अच्छा हुआ मेरा ट्रेन रुक गया, मेरा ट्रेन भी जाता तो क्या होता, मैं स्टेशन में कभी पहुंचता ही नहीं, टक्कर होकर मर जाता। तो कौन है वो व्यक्ति जो एक ट्रेन को रोकता है, दूसरे ट्रेन को निकालता है? एक ट्रेन कंट्रोलर है, एक ट्रेन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर है, उसको मालूम है कौन सा ट्रेन को रोकना है, कौन सा ट्रेन को आगे बढ़ाना है। उसको मेरे साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, मेरा ट्रेन उसने आउटर में रोका है इसलिए नहीं कि वो मेरे को पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, नहीं, लेकिन उसको मालूम है अभी मेरे हित में, मेरी भलाई में यही है कि मेरा ट्रेन अभी बाहर ही रुके। इतना लेट हो गया कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट 1/2 घंटा और सही, 1 घंटा और सही, कम से कम 1 घंटा के बाद सुरक्षित स्टेशन में तो पहुंचेंगे। आपका और मेरा जीवन भी ऐसी प्रकार है, एक सुपर हेवनली स्टेशन मास्टर है जो आपके और मेरे ट्रेन को कंट्रोल करता है, कभी किसी के ट्रेन को रोकता है, कभी किसी के ट्रेन को आगे बढ़ाता है, कभी किसी के ट्रेन को आशीष देता है, कभी किसी के ट्रेन को दुख बीमारी देता है, कभी किसी को दुख परेशानी देता है, कभी किसी को दुख सुख और खुशियां देता है, कभी किसी को आंसू देता है, कभी किसी को तकलीफ देता है। वो किसी के बुराई के लिए नहीं, हम सब के भलाई के लिए वो सब कुछ करता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम इस बात को समझ नहीं पाते। थोड़ी सी बुराई के लिए, थोड़े से घबराहट के लिए, थोड़े से तकलीफ के लिए हम प्रभु उसके सामने बुड़बुड़ाते हैं। अरे प्रभु जी ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, इतने समय से मैं हूँ, आधे घंटे से मैं खड़ा हूँ, आधे छह महीने से मैं खड़ा हूँ, एक साल से मैं खड़ा हूँ, क्या हुआ प्रभु जी, बुड़बुड़ाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे भलाई में ही, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है तुमसे, लेकिन तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए मैं ये करता हूं। मैं हमेशा एक वो इलस्ट्रेशन देता हूं, हमारी बहनें केक बनाती है, केक घर में केक बनाती है, केक में बहुत सारा सामान डालते हैं, केक में हम अंडा डालते हैं, केक में हम मैदा डालते हैं, बराबर मैदा डालते हैं, और केक में हम शक्कर डालते हैं। शक्कर चक्कर देखने से कैसा होता है, एक स्पून खाए तो एक स्पून और खाने का इच्छा, शक्कर बोलते हैं। उस केक के मिक्स में एक और चीज डालते हैं, उसका नाम है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। कभी खाया है? खाना भी मत, बहुत कड़वा कड़वा घूट। लेकिन वो भी चुटकी भर डालते, शक्कर भी डालते, मैदा भी डालते, अंडा भी डालते, एसेंस भी डालते, काजू बादाम भी डालते, टूटी फ्रूटी भी डालते, सब डालकर मिक्स करते हैं, शक्कर भी डालते हैं, मीठा चीज भी डालते हैं, कड़वा घूट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, सब मिक्स कर गैस के ऊपर रखते हैं। 45 मिनट के बाद गैस ऑफ करते हैं, ठंडा होने के बाद केक पीस कट करके हम खाते हैं। मेरा सवाल, शक्कर का स्वाद आता है? मीठा स्वाद आता है? आता है। बेकिंग पाउडर का स्वाद आता है? आता है? नहीं आता। क्यों? डाला था कि नहीं, भूल गए? नहीं, डाला था, लेकिन उसको बाद में ऐसा मिक्स किया, ऐसा मिक्स किया, ऐसा फेटा मारा, वो बेकिंग पाउडर का स्वाद सब अच्छा हो गया, मीठा हो गया। अब केक का एक पीस खाने से मन करता है, इसका एक पीस और दे सकता हूं। अच्छा, रोमियो 8:28 में क्या लिखा है, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने वह आजीवन के अंतिम पड़ाव में वो कहता है, तुमने मुझ पर हानि का बात किया था, तुमने मेरे लिए हानि सोचा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए इसमें से भी भलाई उत्पन्न की। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचें, क्या हम भी यूसुफ के समान अपना जीवन बिताते हैं कि नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु मेरी सहायता करे, प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु हम सबकी सहायता करे, हम यूसुफ के समान प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और एक पल के लिए, फॉर अ सोलेम मोमेंट एज दिस, लेट्स एग्जामिन आवर ओन लाइफ्स। जब सब सर झुके हुए हैं और जब सब आंखें बंद हैं, हम अपने आप के जीवन को जांचें। डियर बिलीवर्स, अजीज विश्वासियों, आज परमेश्वर को यूसुफ की जरूरत है, गॉड नीड्स जोसेफ्स टुडे। आज परमेश्वर को बहुत यूसुफ की जरूरत है, ऐसा यूसुफ जो पारदर्शी जीवन बिताए, ऐसा यूसुफ जो ईमानदारी का जीवन बिताए, ऐसा यूसुफ जो विश्वास योग्य जीवन बिताए। आप विश्वासी हैं या विश्वास योग्य हैं? कुछ चीज छिपाकर घूमते हैं या जीवन खुले पुस्तक के समान रखकर घूमते हैं? परमेश्वर यूसुफ के साथ था, यूसुफ एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर यूसुफ के साथ था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन परमेश्वर सबके साथ नहीं है। क्या परमेश्वर आपके साथ है? यूसुफ एक पवित्र व्यक्ति था, उसके चारों तरफ अपवित्रता थी, सारी दुनिया के लिए, सारे समाज के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए वो पाप सही था, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के नजर में गलत था, इसलिए उसने वो किया नहीं। क्या ऐसी पवित्रता हमारे जीवन में है? चाहे सब अपवित्र हो जाएं, फिर भी क्या हम पवित्रता के साथ जीवन बिता सकते हैं? जोसेफ वॉज अ मैन ऑफ फेथ, यूसुफ विश्वास करने वाला एक व्यक्ति। मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ क्यों ना, भाइयों को देखकर कहा तुमने मेरे लिए हानि सोचा, लेकिन परमेश्वर ने इसमें भलाई उत्पन्न किया। विल यू बिकम अ जोसेफ टुनाइट? क्या शाम को एक यूसुफ आप बनेंगे? क्या अपना जीवन आप प्रभु को समर्पित करेंगे? प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। जब तक आप हां नहीं भरेंगे, तब तक प्रभु आपको आशीष नहीं दे सकता। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे भी एक यूसुफ बना, मुझे भी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके श्रेष्ठ दास यूसुफ के जीवन के लिए। कितना महान जीवन उसका था। मन करता है उसका जीवन पर हम मनन करते जाएं, लेकिन समय हमारे पास कम है। हमारी सहायता करें प्रभु जी, हमें भी यूसुफ के समान जीवन हम बिता सकें। पारदर्शिता का जीवन आप हमें दें, कुछ भी छिपाने ना पाए। ईमानदारी का जीवन हमें दें, विश्वास योग्यता का जीवन हमें दें। हम आप पर विश्वास करने वाले ही नहीं, लेकिन आप हम पर विश्वास करने वाले लोग हमें बना, हमें पवित्र लोग बना प्रभु जी। सारी दुनिया पवित्रता की ओर बढ़े, लेकिन हम व्यक्तिगत रीति से पवित्रता के साथ हम जीवन बिता सके। विश्वास करने वाले लोग बना, यूसुफ के समान, पौलुस के समान, रूप को देखकर नहीं, विश्वास के साथ चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। इस वचन को आशीष करके हमें दीजिए, इस वचन के अनुसार जीवन बिताकर यूसुफ बनकर इस अंतिम दिनों में जीने के लिए आप हम सब की सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और अति शीघ्र वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं।